विहान अपने बड़े से रूम के बड़े से बेड पर पसर कर सो रहा था। अचानक ही उसका फोन बज उठा तो उसकी नींद में खलल पड़ गई। उसने खींचते हुए हाथ बढ़ाकर साइड में पड़ा फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन पर उसकी नज़र पड़ी, उसकी सारी नींद एक झटके में उड़ गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। लबों पर तिरछी विजयी मुस्कान तैर गई। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, मुझे पता था कि तुम मुझे ज़रूर फ़ोन करोगी आज, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मुझसे बात करने के लिए इतनी बेताब होगी कि इतनी सुबह सुबह ही मुझे फ़ोन कर दोगी। सुबह सुबह तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिलेगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने तो आज मेरा दिन बना दिया। इसकी बातें सुनकर आरवी को गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। किसी तरह अपने गुस्से को काबू करते हुए उसने आराम से कहा, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ हाँ कहो, क्या फ़ैसला लिया है तुमने? विहान ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। आरवी कुछ सेकंड के लिए शांत पड़ गई, फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ज़ोर से कहो। विहान जानबूझकर उसको परेशान करने लगा था। उसका नाटक देखकर आरवी को चिढ़ होने लगी। गुस्सा बढ़ गया उसका, पर अभी वो गुस्सा कर नहीं सकती थी, तो एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने गंभीरता से कहा, मैंने कहा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। मुझ पर कोई अपना जोर नहीं चला सकता, तुम शर्त बोलो, अगर मुझे ठीक लगा तो मान लूँगा, वरना शादी तो तुम्हें किसी भी सूरत में मुझसे करनी ही होगी, विहान ने अकड़ते हुए जवाब दिया। आरवी ने अपने होंठ को दांतों से दबा लिया। रोना आ रहा था उसे, पर उसने खुद को बिखरने नहीं दिया और कुछ देर बाद बोली, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी, पर तुम उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पति पत्नी होंगे हम, तुम अपनी मर्ज़ी से मुझे अपने पास आने देना, तो ज़बरदस्ती करनी ही नहीं पड़ेगी। विहान ने बेफिक्री भरा जवाब सुनकर आरवी के आंखों में नमी तैर गई। उसके मुँह से ठंडी आह निकली। कैसे कंट्रोल कर रही थी वो अपने जज्बातों को, ये वही जानती थी। कुछ समय लगा उसको खुद को नियंत्रित करने में, उसने बाद उसने हिम्मत करके कहना शुरू किया, तुमने पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती की और अब मुझे शादी करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मैंने शादी के लिए तो हाँ कह दिया है, उसके बाद तो मुझ पर तुम्हारा ही हक होगा, पर मुझे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, खुद को समझाने में वक्त लगेगा मुझे, पर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। रिश्ता जुड़ेगा तुमसे तो तुम्हारे प्रति लॉयल रहूंगी, लेकिन अभी मैं उस सब के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे वक्त चाहिए, और तब तक मेरा दिल इसकी स्वीकृति नहीं दे देता तो मुझसे दूर रहोगे, फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। इतना कहकर वो खामोश हो गई। विहान शांति से उसकी बात सुन रहा था। आरवी के चुप होने के बाद उसने कहना शुरू किया, देखो शादी तो जल्दी से जल्दी होगी, हाँ क्योंकि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ा वक्त ज़रूर दूंगा खुद को मेरे हिसाब से ढालने के लिए, पर याद रहे मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा तुम्हारी हाँ का। रही बात लॉयल रहने की, तो वो तो तुम्हें रहना ही होगा। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मैं क्या हाल करूँगी, तुम सोच भी नहीं सकती। विहान ने उसको गुस्से में धमकी दी, जिसे सुनकर भी आरवी खामोश रह गई। आज किस्मत उसको ऐसे मोड़ पर ले आई थी कि ना चाहते हुए भी उसकी हर गलत बात को बर्दाश्त कर रही थी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही, फिर दोबारा आरवी ने कहना शुरू किया, तुम मेरे घर अपना रिश्ता भेजोगे, पर उसमें मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, मैं अपनी मम्मी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। तुम अपने पेरेंट्स को ये कह सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर ये नहीं कहोगे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर मेरी मम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ किया तो मैं भी हाँ कह दूंगी, पर मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी। तुम किसी को भी हमारे बीच जो हुआ उसके बारे में नहीं बताओगे, नॉर्मल तरीके से रिश्ता आएगा मेरे घर, कोई हंगामा नहीं चाहिए मुझे। मम्मी को तुम्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम मेरे लिए सही हो, मैं बीच में कुछ नहीं कहूंगी, जो उनका फैसला होगा वही मैं मानूंगी। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी मम्मी मेरे लिए कभी इनकार ही नहीं कर सकती, तुम्हें बस उनके सामने रिश्ते के लिए हाँ कहनी होगी, बाकी सब मैं और मेरे पेरेंट्स संभाल लेंगे। और कुछ कहना हो तो कहो, क्योंकि आज ही मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर आ जाएंगे मेरा रिश्ता लेकर, उससे पहले हमारे बीच सब क्लियर हो जाना चाहिए। आरवी के लब एक बार फिर खामोश हो गए। हिम्मत जुटा रही थी वो आगे उससे बात करने के लिए। ऐसा नहीं था कि उससे डर रही थी, बस जुबान से एक एक शब्द निकालने के लिए खुद से ही लड़ रही थी वो इस वक्त। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर से कहना शुरू किया, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ने आज तक मेरे लिए बहुत किया है, मुझे पढ़ाने लिखाने और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत मुश्किलें उठाई हैं, और अब मेरी बारी है, मैं उन्हें सुकून भरी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, शादी के बाद भी मैं काम करना चाहती हूँ, अपनी मम्मी की मदद करना चाहती हूँ, तुम मुझे शादी के बाद अपने घर में कैद करके नहीं रखोगे। चलो स्वीटहार्ट, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। वैसे तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा है मेरे पास, पर क्योंकि तुम्हारी इच्छा है काम करने की, तो मैं न्यू कंपनी शुरू करने वाला हूँ। तुम मेरे साथ काम कर सकती हो और उन पैसों से अपनी माँ की मदद कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। विहान की बात सुनकर आरवी को कुछ सुकून भी मिला और वो थोड़ा परेशान भी हो गई। उसके साथ काम करने का सोचकर परेशान हो गई थी वो, पर उसने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर उनके बीच खामोशी छा गई। कुछ देर बाद विहान ने ही उस खामोशी को तोड़ा। और कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। तो ठीक है, आज ही मैं आऊंगा अपने पेरेंट्स के साथ, तैयार रहना। बाय। इतना कहते ही आरवी ने फोन काट दिया और आंखों से एक बूंद आंसू छलक कर उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जो फैसला उसने लिया था वो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला था, पर अब उसको हालातों से समझौता करना था। अपनी किस्मत में जो लिखा था उसे अपनाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था उसके पास। कितनी बेबस महसूस कर रही थी वो इस वक्त। कुछ देर वो यूं ही खड़ी रही, फिर उसने आंसुओं को पोंछा और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद नहाकर तैयार होकर नीचे चली आई, अनुपमा जी को बताकर मंदिर चली गई। बहुत बेचैन था उसका दिल और किसी से तो कुछ नहीं कह सकती थी, पर भगवान को कुछ कहने की जरूरत ही कहाँ थी। वो तो बिन कहे ही अपने बच्चों की हर दुख हर तकलीफ को समझ जाते हैं। आरवी भी जाकर महादेव की प्रतिमा के सामने बैठ गई और सूनी आंखों से उन्हें देखने लगी, जैसे अपने मन की बात उन तक पहुंचा रही हूँ। यहाँ आकर मन कुछ शांत हो गया था, इसलिए वो खामोशी से उनके सामने बैठी उन्हें देखती रही। दूसरी तरफ विहान आज बहुत खुश था। वो सीधे स्लीपर्स पहनते हुए नीचे चला गया। बाहर गार्डन में डॉक्टर हर्षवर्धन अनीता जी के साथ बैठे थे। अनीता जी विहान की माँ है। जब विहान छोटा था तभी एक हादसे में उन्होंने अपने चलने फिरने की शक्ति खो दी है। वो व्हील चेयर पर बैठी थी और हर्षवर्धन जी उनके पास बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे, साथ में दोनों चाय पी रहे थे। विहान ने उनके पास जाकर दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया, तो जहां अनीता जी ने मुस्कुराकर उसको रिप्लाई किया, वहीं हर्षवर्धन जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आज आपकी गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी नहीं हो गई क्या डैड? आप मुझे ताने मार रहे हैं, विहान ने शक्ल बिगाड़ते हुए कहा। तो हर्षवर्धन जी ने भी बिना किसी भाव से कहा, नहीं हम तो सच्चाई बता रहे हैं, इतनी जल्दी आपकी सुबह होती नहीं है, इसलिए हम थोड़ा हैरान है।
देख लीजिए मॉम, डैड को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ अच्छा भी करूं तब भी वो ऐसे करते मेरे साथ, कभी खुशी नहीं होती किसी बात से। विहान ने अनिता जी से शिकायत लगा दी उनकी, पर उनके कुछ कहने से पहले ही हर्षवर्धन जी ने गंभीरता से कहा, पहले ऐसा कोई काम तो करो जिससे हमें आप पर गर्व हो सके, तुम्हारी हरकतें हमें परेशान करने वाली होती हैं तो खुश कैसे हो सकते हैं हम। क्या कर रहे हैं आप, सुबह सुबह बेचारे बच्चे को सुनाने लगे आप, अनिता जी ने उसका बचाव किया, जिस पर हर्षवर्धन जी ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे ये मामूली बात हो उनके लिए। टू बी कंटिन्यूड।